ओम शांति। आज भाषण कला की सीरीज में स्टेज फियर जो होता है उससे कैसे मुक्ति पाया जाए। स्टेज में जैसे ही जाना होता है तो डर लगने लग जाता है, तो उससे कैसे अपने को तैयार करें जो हम स्टेज में जाके बोल सकें। वैसे जैसे लोग होते हैं उन लोग वैसे ही अपनी सामान रखते हैं। जो हिटलर थे ना, बहुत बड़ा तानाशाह, तो उसको उनकी दोस्तों ने पूछा कि इतनी सारी लोग होते हैं, आप कैसे आराम से उनसे बातचीत करते हो, भाषण देते हो? तो उसने क्या बोला था पता है? वहाँ कोई मनुष्य नहीं होता है, वहाँ भेड़ बकरी होते हैं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता है।
तो आप हमको क्या
यही बात ही कर रहा हूँ मैं, मतलब जो जैसा होता है ना उसी दृष्टि से ही देखता है, क्योंकि वो तानाशाह है तो वो क्या देखेगा, दूसरों को नीचे ही देखेगा ना। तो अपने को सबसे पहले, हम इस आध्यात्मिक फील्ड में है तो बाबा ने हमें आत्मा अभिमानी की सम्मान दिए है, तो सबसे पहले हम सबको आत्मा देखे, मैं आत्मा और सभी आत्माएं हम यहाँ पर है। तो इस समान में अगर हम रहेंगे, टिक पाएंगे, आत्मा अभिमानी देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, शरीर से हम डिटैच होंगे, तो ही जाकर हम इस रूहानी फील्ड का जो स्टेज है इसमें हम अपने प्रभुत्व जमा सकेंगे। क्योंकि यहाँ कई सारी बड़े बड़े विद्वान है, कई सारी डॉक्टर्स है, कई सारी वकील होंगे, कई सारी कितने बड़े बड़े इंजीनियर्स होंगे। अगर हम ये देखने लग जाएंगे तो हम निश्चित ही बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि उनों की स्टेज और हमारी स्टेज में काफ़ी अंतर है। अभी जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम बच्चियाँ जो हो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर भी तुम बड़े बड़े विद्वानों को ज्ञान सुनाती हो, ये कैसे संभव है? क्योंकि आत्माभिमानी की सम्मान से ही ये संभव है। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि डरने की जो बातें हैं, डर हमें क्यों लगता है और डर से हमको फायदा क्या है, नुकसानी क्या है, ये भी अपने को समझना होगा। तो स्टेज में जैसे ही बुलाया जाता है, जैसे यहाँ भी ये इंस्टेंट मेथड दे रहे हैं, जैसे ही इंस्टेंट मेथड मिलता है तो क्या हो जाता है, अभी अपना क्या हो जाता दिल की धड़कन बढ़ने लग जाता है, आधा जो नॉलेज है वो तो वहाँ से उठते उठते ही खत्म हो जाता है, और यहाँ आने के बाद थोड़ी सी बचता है, तो क्या बोलेंगे उसमें। तो इसलिए सबसे पहले जैसे ही टॉपिक मिलेगा तो लंबी लंबी श्वास से लेकर के अपने को तैयार करते करते यहाँ पर आने का और यहाँ पर आने के बाद भी अपने को कंफर्ट महसूस करने का, और उसके बाद फिर बोलने चालू करना है, तो फिर अपने को बैलेंस रहेगा और हम बोल सकेंगे। तो मैंने ऐसे छोटी छोटी पॉइंट्स निकाला हूँ जो मैं देख के ही बोलूँगा, क्योंकि देखना जरूरी भी है। तो सबसे पहले यही है कि डर को समझना है। डर क्या है? डर वास्तव में कुछ भी नहीं है, हमारा कल्पना ही है। हम कल्पना करते हैं कि मुझे वो देख रहा है, वो देख रहा है, क्या बोलेगा, कैसे होगा, ये कल्पना में रहते रहते हम अपने आप को ही नीचे उतार लेते हैं, और हम स्टेज में जाने के बाद डरने लग जाते हैं, और थोड़ी बहुत जितनी नॉलेज था वो भी खत्म। थोड़ा सा 100 में से 75% उठ के आने में होगा, और फिर ये आने के बाद 5% बच जाता है, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए डर को सबसे पहले त्यागना है। ये डर को त्यागना मतलब डर को समझना है। डर हमारा अपनी मन से ही क्रिएट की हुई छोटी सी इमेजिनेशन है, इसको समझना है। अपने विषय के बारे में भली भांति जानना पड़ेगा। अभी हम स्टेज में जा रहे हैं, अपने विषय के बारे में पता ही नहीं, कोई टॉपिक दिया है उसके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया ही नहीं है, तो ज़रूर उसमें हम बोल नहीं सकेंगे। जितना भी अच्छा माला गाँसने वाला माली हो, पर उसके पास में शब्दों रूपी फूल ही नहीं हो, तो वो कैसे माला गाँसेगा, कैसे माला गुथेगा, कैसे जोड़ेगा माला को? तो शब्द बहुत सारी जमा करना चाहिए, तो जाके वो नहीं डरेगा। अगर शब्द की कमी है तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। और पूरी योजना बनाना चाहिए, अभी मैं इस चीज़ के बाद ये पढ़ूंगा, इसके बाद ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, कम से कम थोड़ी अपनी लिस्ट बनाना चाहिए, ताकि हम वहां जाकर के भाषण को योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत कर सके। और ऑडियंस से सवाल, ऑडियंस ने जो सवाल करते हैं ना, ऑडियंस प्रश्न पूछेंगे जरूर, हम किसी टॉपिक में अगर वहां खड़ा है तो जरूर प्रश्न तो पूछेंगे, और उसकी जवाब देने के लिए हमको कई सारी रिसर्च करना पड़ सकता है, वो सभी रिसर्च करके तैयार रहने का, ताकि हम कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसमें नर्वस न हो। और दूसरी बात जो मैंने कही लिया, जो आपने जो ब्रीदिंग जब चालू होगा, जैसे डरने लग जाता तो उसे क्या होता है, धड़कन बढ़ जाता है और कपने लग जाता है, उसमें अगर ऐसा हो ही गया है तो थोड़ा सा अपने को संभल करके अभी वहां पर लंबी लंबी श्वास लेंगे तो माइक में आवाज जरूर होगा और उससे और डिस्टरबेंस आएगा और सबको पता भी चलेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने को कंफर्टेबल करने के हिसाब से रखना है और ब्रीदिंग थोड़ी कम देख के लेना है ताकि दूसरों को पता भी ना चले और अपने को ठीक भी कर ले। श्रोताओं को समझिए कि किस क्वालिटी के है, मेरे आगे जो श्रोताएं बैठे हैं किस क्वालिटी के है, उनको भी समझना जरूरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उनों को समझे और वो बड़े बड़े है करके हम अपने को छोटा समझे, ऐसा भी नहीं, पर उनों का क्वालिटी को समझना जरूरी है। हम जो बोल रहे हैं उनों को कैसा लग रहा है उसको भी ध्यान रखना है। और शब्द शब्द याद करके रट के अगर हम जाएंगे ना तो जरूर डरेंगे। एक बारी एक छोटा सा स्कूल में एक स्टूडेंट को स्पीच दिया गया था इंग्लिश में, पूरा रटाया था उसको, और वो बोलता गया और उसको एक शब्द उसने भूल गया और वो खड़ा रहा 15 मिनट तक मेरी सम्मुख में ऐसा। मैंने बोला क्यों रटाया इसको, उन लोग बोलते हैं कोई विकल्प ही नहीं है, रटाना ही है, तो रटाया तो क्या हुआ, पूरा बेइज्जती हो गया, जो अभिभावक दिवस के दिन ऐसा हुआ था। इसलिए रटेंगे और एक शब्द अगर भूल गया तो फिर पूरा ही समय वो खड़ा रहेगा, वो डरता ही रहेगा, उसको आगे बढ़ नहीं पाएगा। फिर अपने को क्या है, फोकस श्रोताओं की तरफ करना है, सॉरी फोकस श्रोताओं की तरफ नहीं, अपने वक्तव्य की तरफ करना है। अभी अगर वक्तव्य श्रोताओं की तरफ ध्यान रखेंगे, उनों में फोकस रखेंगे तो क्या होगा, कोई किस नजर से देख रहा होगा, कोई किस नजर से देख रहा होगा, अगर हम उसमें फोकस रखेंगे ना तो अपने को मन में लगेगा ये मेरे लिए क्या सोच रहे हैं, कहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा हो, ये अगर भावना आए तो भी हम फिर डरेंगे। और नर्वस होता हूँ मैं करके किसी से चर्चा नहीं करना है, मैं जैसे स्टेज में जाता हूँ तो मुझे डर लगता है ऐसा होता वैसा होता, ये बताना नहीं, अगर ये बताएंगे ना तो उन्हों को पता चलता है, एक दूसरों को फिर उन लोग छेड़ाखानी करेंगे और बोलेंगे इसको डरा हुआ। और वो तो पर स्टेज की बात है जब वहाँ जाएंगे तो। और ड्रेसअप हमारा क्या हो, सही सलामत हो, कोई ड्रेसअप की वजह से अपने को दिक्कत न हो, कंफर्टेबल हो, तो उसमें पैरन में ध्यान रखना है। सभी से थोड़ी ही देर के लिए ही क्यों ना हो आई कांटेक्ट बनाना है, सबको देखना है, एक ही तरफ ही देखना नहीं। और जो नेगेटिविटी चलता है, तो जो नेगेटिविटी चलता है अपने मन में, तो उस नेगेटिविटी का सवाल जवाब खुद को ही करके अपने को सही करना है। जो नेगेटिविटी आता है उसको पॉजिटिविता में कैसे लाया जाए, ये सब अपने से सवाल जवाब करना है। और डर से होने वाला जो फायदा और नुकसान का लिस्ट निकालना है, कितनी फायदा है कितनी नुकसानी है, अगर ये लिस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, तो फिर डर से फायदा क्या है और नुकसानी क्या है। जैसे समझ लीजिए डर से फायदा है, जैसे कोई आपद में हम पड़ रहे हैं तो उसमें डरना जरूरी है, अपने को वहां से बचाने के लिए भागना जरूरी है, डेंजरस है तो भागना है खतरा में। और डर अभी इसमें क्या है, अपने को बोलने की जो बातें हो रहा है, अपनी वक्तव्य रखना है, अगर इसमें हम डरेंगे तो फिर हम बोल नहीं सकेंगे, और जो बोल नहीं सकता उसको समाज में कोई मान्यता नहीं होता, और समाज तो क्या चाहता है, हम डरे न बोले, हम नहीं बोलेंगे डरेंगे तो उनको अच्छा ही लगेगा ना, तो इसलिए अपने को बोलने से क्या है, फायदा है, हम आगे बढ़ सकते हैं, कई सारी कार्य कर सकते हैं, तो न बोलने से हम वैसे ही रह जाएंगे। तो डर से क्या होता है और फायदा क्या है, नुकसान ही क्या है, अगर हम ये लिस्ट निकालेंगे तो, और इसका लिस्ट में जरूर फायदा नहीं है, घाटा ही है डर से, तो अपने को डर से निकालने की एक रास्ता मिल सकता है। और डर भगाने के लिए क्या करना है, इमेजिनेशन करना है, कल्पना करना है। जैसे पानी में जाने से डर लगता है, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा समंदर में है आप, वहां पर आप तैर रहे हैं, उसमें आप कोई डर नहीं है, आप तैर रहे हैं, लंबी लंबी स्विमिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन करना है, जैसे शेर से डर लगता हो तो सम्मुख में शेर आ गया है, मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। मगरमच्छ आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर बैठ के स्विमिंग कीजिए। मतलब ऐसे इमेजिनेशन करना है, तो हम विजुलाइजेशन ऐसे करेंगे तो हम डर से मुक्त हो सकेंगे। अपने जीवन में नए नए कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहना है, नया नया विचार, नया नया थिंकिंग, नया नया कार्य, हर स्टेप में कुछ नया करने की अगर हम कार्य करते हैं तो हम फिर किसी भी परिस्थिति में हम नहीं डरेंगे, आराम से उसको पार कर सकेंगे। हमेशा पॉजिटिव, स्वस्थ और आत्मविश्वासी रहना है। अगर हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जरूर हम स्टेज में जाके अब लोगों को प्रभाव नहीं कर सकते। पहले से ही मन से कमजोर है, मन में अनेक अनेक भावनाएं चलते हैं, तो फिर हम स्टेज में जाके कैसे लोगों को प्रभावित कर सके। इसलिए मन से भी और शरीर से भी हर तरीके से अपने को फिट रखना है, तो जाकर हम इस डर को खत्म कर सकते हैं। और भाषण जो तैयार किया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे इंग्लिश में कमजोर है, जैसे मेरे को इंग्लिश में अगर भाषण दिया जाए तो मैं जरूर नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ। रीडिंग भले कर लूंगा पर मैं कैसे इंग्लिश में भाषण कर सकता, नहीं कर सकता। तो अपना जो बोलचाल की भाषा है ना, शुरू शुरू में जैसे ही स्टेज में जाना हो तो अपनी बोलचाल की भाषा में भाषण तैयार करना है। और बोलचाल की भाषा जो होगा उसमें कई सारे शब्द हमको पता होता है जो बचपन से हमने जाना है, तो शुरू में बोलचाल की भाषा में अगर हम भाषण तैयार करेंगे तो धीरे धीरे फिर हम और भी आगे तरक्की कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे पहली बार हम स्टेज में गए और पहली बार ही हम बोल नहीं पाए, बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर हम दोबारा उसमें चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। इसलिए पहले बोलचाल की भाषा से इसको थालनी करना है और बाद में आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वीकार करिए कि ये सब होना ही है, डरना, डर होगा ही, हाथ कांपेगा, दिल धड़केगा, अनेक अनेक होगा, पसीना आएगा, ये हर एक ने गुजारा हुआ है। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होंगे आज दुनिया में, उन लोगों का भी अगर हम अनुभव सुनेंगे तो उन लोग भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही बताते हैं कि हमने ये सब झेले हैं, हम भी बहुत डरे थे और हमारा मजाक वही उड़ाएंगे जो कभी स्टेज में चढ़ते ही नहीं, स्टेज में चढ़ते ही नहीं ना, वही मजाक उड़ाते, और जो स्टेज में जाते हैं ना वो कभी उसको मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो प्रोत्साहित करेंगे। हाँ, उसको अनुभव है, क्योंकि ऐसा ही परिस्थिति मेरा भी हुआ था, मैं भी गया था स्टेज में और मैं भी चुपचाप रह गया था, हाथ कांपे थे, ये सब कुछ हुआ था। तो फिर क्या है, वो जो आगे बढ़ चुके हैं वो पीछे वालों को मदद करेंगे, उत्साह देंगे, और आपको जो डोमिनेट कर रहा है, जो आपके ऊपर गाली दे रहा है ना, वो कभी स्टेज में आता ही नहीं है। इसलिए आप समझ लीजिए कि उससे आप कई गुना आगे स्टेज में है, तो इसलिए उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्वीकार कीजिए, ये होगा, आज होगा कोई बात नहीं, कल फिर मैं इसको सुधार तो जरूर करूंगा, ये अपने आत्मविश्वास होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। और जैसे कि छोटी छोटी भाषण से हम यात्रा चालू करें, जैसे आपका ही उदाहरण दे सकता हूं, सर ने भी क्या किए थे, सबसे पहले ओपीडी में चालू किए थे अपनी यात्रा, ओपीडी से चालू हुआ था। और सर से जब हमारा बातचीत होता था ना, तो सर कितने सारे प्रोग्राम किए होंगे, कितने सारी डॉक्टर्स को क्लास दिए होंगे, क्या क्या किए होंगे, पर सर को भी जब बात करते थे तो मधुबन निवासी वालों के सम्मुख में मैं जाके कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, उतने बड़े बड़े लोग हैं, पुराने पुराने लोग हैं, इतने तपस्वी है, उनके साथ में जाके कैसे बोला जाए। सर भी बात करते थे जिसका, और उनका यात्रा कहाँ से चालू हुआ था, ओपीडी से चालू हुआ था, और आज डायमंड हल छोटा बढ़ गया है। नहीं कोई बात नहीं, वो भूले नहीं है, ओपीडी में बैठते ही हर हर रोज बैठते हैं, उसी में बैठ के ही पेशेंट को सेवा करते हैं, उसी कुर्सी में ही बैठ के उन्होंने तो ज्ञान भी वहीं से चालू और जो पेशेंट की सेवा भी वहीं से चालू है। तो छोटी सी जगह से अपने को यात्रा चालू करना है, छोटी थोड़ी सी लोग, छोटी जगह और थोड़ी थोड़ी शब्द, कम कम भाषण, एक साथ कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हो सकता है, पहले थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों से ही हमको आगे बढ़ना है। जैसे साइकिल साइकिल में चढ़ते हैं ना, साइकिल पहले शुरू में ही चलाने को तो नहीं आता, चढ़ेंगे फिर गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चढ़ेंगे फिर चलाएंगे, करते करते साइकिल हम चलाते हैं। इसलिए छोटी सी जगह से चालू करना है और उसकी यात्रा बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी तक हो सकता है। एक दिन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं आप, कोई बात नहीं है उसमें, क्योंकि यात्रा थोड़ी सी छोटी सी जगह से ही चालू होगा पर वो बहुत बड़ी ऊंचाई तक जा सकता है। इसलिए डर को खत्म करने के लिए पहले छोटी सी जगह से ही चालू करना है। और श्रोताओं को क्या है, श्रोताओं से बातचीत करके उन्हों को अगर हम हंसा ही सके ना तो हमारे डर भी खत्म हो जाएगा। एक दूसरों से बातचीत होगा, हम ऐसे चुटकिला जैसा बिना हंसे ही हंस रहे तो समझ जाना चाहिए कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, हंसने दीजिए, उन लोग हंस रहे हैं फिर भी हम अगर उसमें स्थिर हो जाएंगे ना, उन लोग जब हंसेंगे ना तो आपको टाइम मिलेगा अपने को सेट करने में। ये भी पॉजिटिवता ही है, हंस रहे हैं कोई बात नहीं, हंसने दीजिए और अपने को हो सके तो स्टेबल उसमें भी कर सकते हैं। और 10 सर्कों को क्या है, हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम अकेले ही बोलते ही रहेंगे ना तो उसमें अच्छा नहीं लगता, अगर हम उनसे बातचीत करने लग जाएंगे, जैसे अपना जो सुशील भाई जी यहाँ आधा घंटा का टॉपिक दिया होता है, 10 मिनट में पूरा करके उठने लग जाते हैं, तो पकड़ ही लेते और पूछने लग जाते हैं, एक दूसरों से बातचीत करके ही आधा घंटा का टॉपिक उन्हें पूरा ही कर लेते, टाइम पूरा मैनेज हो जाता है। फिर तो क्या क्या बातें निकाल ही लेते हैं जो बताने वाले भी, मतलब इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसे अपने पास में शब्दों की कमी है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो अगर हम श्रोताओं को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें तो हमारा काम हो जाएगा। और स्टेज में जाकर के अगर हम पढ़ने लग जाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्या हुआ था एक बारी, यहाँ पर मैंने पहली बारी प्रश्नोत्तरी किया था, मुझे कोई डर नहीं लगी थी, पर एक बारी मेरे को जब जैसे ही जो पोएम दिया था ना मेथड, तब मैं वहां बैठ के जब पढ़ रहा था ना तो मैं पूरी कांप गया था, यहीं पर ही पूरी कंप हो गया था। क्या हो गया, मुझे उस वक्त ये फीलिंग आया कि ये शब्द जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, अगर मैं एक भी शब्द मिस्टेक उच्चारण किया तो क्या होगा, ये सोच रहा था, तो मैं पूरा ही ऐसे हो गया, मेरा पूरा ही, मैं रोक नहीं सका, अपने को कंट्रोल ही नहीं कर सका, वो होता ही गया, पर ऐसा हुआ था, पर ऐसा हुआ। मतलब ये जो पढ़ने की जो बातें हैं ना, ये चीजें ले जाएंगे ना तो उसमें फोकस जाएगा, और रीडिंग करने लग जाएंगे तो फिर और ही खराबी हो सकता है, डर उससे भी उत्पन्न होता है। क्योंकि अभी डर किस चीज से हो रहा था कि अभी मैं पढ़ तो रहा हूं, अगर मैं पढ़ता पढ़ता या मिस्टेक हुआ, गलत शब्द उच्चारण हुआ तो क्या किया जाए, तो ये भावना अगर आने लग गया तो फिर डरेंगे। इसलिए स्टेज में जाकर के पूरा पूरा रीड नहीं करना है, रीडिंग करने लग जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। और असुरक्षा की भावना मन में आने नहीं देना है। जैसे असुरक्षा मतलब मैं वहाँ स्टेज में तो हूँ पर लोग क्या बोलेंगे, कोई पत्थर फेंकेंगे तो, कोई गाली देंगे तो, ऐसी असुरक्षा की भावना भी होता है। अगर मैं वहाँ जाकर के कुछ हो गया तो ये असुरक्षा की भावना पहले से ही लेके नहीं जाना है, अगर ये पहले से ही लेके जाएंगे तो जरूर डरेंगे। और स्पीच देने से पहले ही मंच में जाना है हो सके तो, और जा करके थोड़ा सा निरीक्षण करना है कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, किस तरह से रखा हुआ है, तो फिर हम उस स्टेज में जा करके अपनी जगह बना सकते हैं, उसको काबू में लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पता ही नहीं है स्टेज बहुत बड़ा होगा कैसा होगा, उसमें जा करके फिर जब बोलने देंगे तो फिर डरने के चांसेस होता है। स्टेज में जाके इसलिए पहले ही निरीक्षण करना है क्या है कैसा है, उसकी वातावरण माहौल देखना है। और भाषण कला में दूसरी चीजें है, खान पान की बात भी आता है इसमें। खान पान की बात इसलिए आता है कि जैसे हम भले बीके लाइफ में है, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, फिर भी इसमें भी हम मसालेदार मिर्ची ऐसी ऐसी जो भी चीजें है ना, ये चीज खाएंगे तो क्या होता है, माइंड अगर कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो जरूर हमारे स्पीच देने जब जाएंगे तो वो माइंड में उन चीजों के कारण से कुछ केमिकल्स तैयार हो जाता है और हम डरेंगे जरूर। उस अपने को ये चीजों को छोड़ना ही, अब मतलब पूरा सात्विक होना चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं ना वैसा कर सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई भी ये चांसेस नहीं है कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हर चीजें उसमें दिखा जा सकता है। इसलिए खान पान में बहुत ध्यान रखना है, अगर अच्छे स्पीकर बनना हो तो उसको खान पान में भी ध्यान रखना चाहिए होता। और वैसे ही आगे जो है योगा प्राणायाम जो भी है मेडिटेशन, ये करना जरूरी है। अगर हमारा योग ठीक नहीं है या हमारा शरीर की या कोई मन बुद्धि की संतुलन ठीक नहीं है तो हम भाषण नहीं दे सकते। और बाबा कहते हैं ना कि आपका आवाज से नहीं है, आपका भाषणा से ही प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा भाषणा ठीक करना हो तो योग में अच्छे से डूबना चाहिए होता है। अगर योग अच्छा नहीं है तो हम जितना भी बताएंगे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हम जैसे ही आगे स्टेज में जाएंगे और श्रोताओं को अच्छा वाइब्रेशन नहीं आ रहा हो तो कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। और उससे फिर श्रोताओं से जो बैड वाइब्रेशन आएगा तो उससे भी फिर डर चालू हो सकता है। इसलिए ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, हम मेडिटेशन अच्छे से करेंगे तो हम नहीं डरेंगे, हम अच्छे से अपना बातें प्रकट कर सकते हैं। और फिर आगे है पवित्रता, अगर पवित्रता की धारणा अच्छी नहीं हो तो हम प्रभाव नहीं छोड़ सकते, और प्यूरिटी नहीं है तो जरूर डरेंगे। जैसे पवित्रता की जब बातें करते हैं ना तो इसमें बाबा कहते हैं ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है वो महात्माओं के समान होता है, और वो बच्चा क्या होता है, किसी से डरता नहीं है, उसको कोई कुछ फीलिंग नहीं है ना, तो बड़े लोग हो कोई भी हो, वो आराम से घूमता फिरता रहता है, खाता पीता रहता है, चलता फिरता रहता है। क्यों, उसको इतना निर्विघ्न है वो, क्योंकि उसमें प्यूरिटी है। प्यूरिटी मतलब हर चीज का प्यूरिटी है उसमें। तो इस तरह का प्यूरिटी एक अच्छे वक्ता के साथ में होना जरूरी है। अब बाहर की बात अलग है, उसको छोड़ूं, फिर भी प्यूरिटी अच्छा है तो उसमें क्या होगा, डर की जो भावना है वो खत्म हो ही जाएगा। तो पवित्रता अपना जो श्रृंगार है उससे भी हम डर को खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर की बात यही है, अगर हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो जरूर हम स्टेज में जाके नहीं डरेंगे और हम अपना प्रभाव छोड़ के ही आएंगे। इसलिए हम इन चीजों को ही ध्यान रख सकते हैं।
16 पॉइंट
अच्छा, तो सुशील भाई जी ने आप मैं जब बोलते बोलते ही उन्होंने ये पॉइंट नोट कर लिए हैं। तो इसमें स्टेज फियर को कैसे समाप्त करें, इसमें एक नंबर में है आत्मा अभिमानी स्थिति में रहे, किसी के स्टेटस को न देखे। दूसरे नंबर है अपने पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। और तीसरे नंबर में है सामने वाले श्रोताओं की नब्ज परख कर भाषण हो, किस क्वालिटी के हैं। अपने भाषण के ऊपर पूरा ध्यान हो, अपने डर की चर्चा नहीं करनी है। छठा नंबर में है अपने भाषण पर प्रभुत्व जमाने के लिए बार बार मन ही मन दोहराने की प्रैक्टिस करनी है। 7 नंबर में है अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है। 8 नंबर में है जो भाषा हमें आती है उसी अनुसार भाषण हो। 9 नंबर में है यदि डर होता भी है तो भी आगे के लिए रुकना नहीं है। 10 नंबर में है हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, इसके लिए पहले से ही मन को तैयार रखना है। ग्यारह नंबर में है। कोई बात नहीं। हाँ, बीच से सभी चली गए तो यहाँ
उनको क्या, तो आप भी जा सकते हैं,
चाबी बंद करने और रुके।
बाकी ऐसा तो हो ही नहीं जाता, बाकी ऐसा हो ही नहीं जाता, बाकी ऐसा हो ही गए तो भी कोई बात नहीं, अपनी भाषण को पूरा करना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए बीच में आधा अधूरा। ग्यारह नंबर में है, छोटे छोटे भाषण से अपनी यात्रा शुरू करनी है। टाइम भी छोटा, दो शब्द बोलते ना, जैसे कि बोलते आप आकर के मंच में दो शब्द अपना रखिए, तो दो शब्द मतलब क्या होगा, थोड़ा ही होता है, उसको भी पता है कि ये अभी अभी आके बोल नहीं सकेगा, उसको पता होता है, इसलिए बोलते हैं दो शब्द, आप दो शब्द रखिए बोलते हैं ना, मतलब ये हो सकता है आके बोल ही ना पाए, बस दो ही शब्द। और बारह नंबर में है, श्रोताओं को हंसाना जरूरी है, कोई जोक्स चुटकीला, कोई कहानी कथावत, ये सब। और तेरह नंबर में है, श्रोताओं को भी भाषण में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ये डर कैसे खत्म करें, इसमें हम आप लोगों को भी बुला के अगर हम कुछ बातें कहने दिए तो आप खुद भी अनुभव करेंगे डर लगता है या नहीं लगता अपने को। जो कभी माइक पकड़े नहीं होंगे वो तो जरूर डरेंगे, पर इसको क्या है, हम इन्वॉल्व होंगे तो फिर श्रोता भी आगे बढ़ सकते हैं और हमें भी उसमें सपोर्ट मिलता है, तो फिर हमको भी डरने की जो मार्जिन है वो कम हो जाती है। मंच का पहले से ही मुआयना कर लेना चाहिए, मतलब निरीक्षण करना चाहिए। अच्छा, और पंद्रह नंबर में खान पान का भी ध्यान हो, ऐसा न हो कि स्टेज पर डकार मारते रहे। डर खत्म करने के लिए मन वचन कर्म में प्योरिटी होनी चाहिए, ये सोलह नंबर की पॉइंट। तो ये प्योरिटी की जो बातें हैं ये हर फील्ड में काम में आता है, वो भले कम हो या ज्यादा हो, जैसे अच्छे अच्छे क्लासिकल रागिस्ट होते हैं ना, उन्हों को भी ब्रह्मचर्य इतनी इम्पोर्टेंट है, अगर उन्हों का वो सही नहीं है तो उन्हों का आवाज ही सूख जाता है, इसलिए प्योरिटी हर जगह में महत्व रखता है, भाषण कला बोलने की कला में अगर प्योरिटी नहीं है तो फिर वो अधूरा ही रह जाता और डरेगा भी, अनेक चीज हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।